This is the Epilogue Audio Experience.
Hello, listener. Thank you for tuning into this podcast where I bring to your ears inspiring conversations with some of the best artists, singers, composers, lyricists. Every week, I talk to a musical genius to find out their creative discipline. I am Eva Bhatt, and you are listening to 9XM Soundcast from India's leading music channel, 9XM. Do subscribe to this podcast on Epilogue Media, your one stop for engaging and entertaining podcasts. This episode is my conversation with the singer of chart busters in Bollywood movies like Dilwale, Ae Dil Hai Mushkil, Jagga Jasoos, Judwa 2, etc. His latest release is Pritham's Sakht Jaan for the movie 83. I have asked him to share some interesting, unheard stories about working with Pritham, some inspiring tips shared by him as a mentor, and the role of recordists in the industry behind the success of a song or a singer. Amit Mishra, it's always a great pleasure connecting with you, but this is your first time on 9XM Soundcast.
That's so kind of you, Eva, first of all, and thank you so much. Aapne itne ache that all for all kind words, and it's always an honor to be over Zoom call or to interact along with you guys.
Mumbai mein, you know, for the armed forces, humne ek bahut hi pyara show kiya tha. Pritham and the entire gang, right from Shalmali to Amit Mishra, and उस स्टेज के उस परफॉर्मेंस के बाद हमने यू नो पैंडेमिक के चलते कई बार यू नो जूम कॉल किए या फिर इंस्टा लाइव भी किए क्योंकि यू रिलीज्ड सम फैंटास्टिक यू नो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स विद अस ऑन 9XM
जी वो बहुत अच्छा मोमेंट भी था इनफैक्ट बिकॉज 9XM के साथ जो प्रोजेक्ट किया था हमने प्रीतम दा के साथ दैट वाज फॉर इंडियन नेवी आई गेस
इनफैक्ट इट वाज फॉर द आर्म्ड फोर्सेस यस एब्सोल्युटली
इट वाज द आर्म्ड फोर्सेस एंड आई हैड रियली वंडरफुल टाइम बिकॉज मुझे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करने को मिल रहा था उस समय नकाश जी थे हमारे श्रीराम जी थे अंतरा मित्रा जी थी शामनी कुलगड़े जी थी एंड ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली प्रीतम दा वाज देयर सो इट वाज कंप्लीटली एन ऑनर फॉर मी टू परफॉर्म शाश्वत भी थे And it was real fun to perform for that project.
It's a memorable. It was such a memorable evening. Agreed. और उस you know उस माहौल को हम भूल नहीं सकते क्योंकि कितना मजा you know जितना मजा हम लोगों को as an audience आया है लेकिन आप लोगों को इतना मजा आ रहा था. You guys were having you know a blast.
Right, it was really nice. It was actually good fun. And it's always super fun to perform with Pritham da. मुझे बहुत मजा आती है और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है and all gratitude to the whole team because उसमें जो musicians भी थे musicians were also brilliant one of the best Spanish musicians of industry and one of the best technicians we had from the industry Vijay Dayal sahab was there Pump sir was there drums पे Nirvan थे मतलब it was an endless list of one of the you know ace musicians we have in the industry so yeah It was super fun.
बिल्कुल बिल्कुल अमित सो हम बहुत सारी बातें करेंगे यू नो आपकी आपके म्यूजिक की आपके म्यूजिकल जर्नी के बारे में प्रीतम सर के साथ आपने इतना सारा काम किया है तो यू नो बिफोर दैट यू नो लेट्स टॉक अबाउट यू नो अ बिट अबाउट योर चाइल्डहुड बिकॉज आई वुड लाइक टू नो एंड आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू आपके बारे में हम और जानना चाहेंगे कि यू नो एज अ सिंगर एज एन आर्टिस्ट किस तरह से आपकी जर्नी आपके बचपन से ही शुरू हुई वो म्यूजिक का माहौल कैसा था आपके घर में
जी मेरी फैमिली में कोई भी ट्रेन म्यूजिशियन नहीं है बट मेरे घर में म्यूजिक का माहौल बहुत अच्छा था I remember दो शेल्फ हुआ करते थे एक तरफ मम्मी के फेवरेट कैसेट्स होते थे मेरी मम जो कैसेट्स लगाते थे अपना और एक तरफ पापा अपने फेवरेट कैसेट्स लगा के रखते थे मम के कैसेट्स में मोस्टली कलेक्शन होते थे महेंद्र कपूर साहब किशोर दा एंड रफी साहब और पापा के कलेक्शन में मुकेश जी का पूरा एक कलेक्शन होता पूरा एक शेल्फ भरा रहता था उसमें आई गेस मेरे फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद एक शेल्फ और भरनी शुरू हुई जो मेरे कसेंस की थी जिसमें मुझे याद है मैं गजल से बहुत इंस्पायर था उस समय और मेरा जो पहला फेवरेट आई गेस मैंने पंकज उदास साहब का एक कसेट लिया था और उसके बाद फिर ताल का लिया था फिर धूम धीरे धीरे फिर मैं धूम का लिया मैंने कसेट एंड उसमें कसेट ज्यादा ट्रेंड में हुआ करते And Papa जब भी आते थे ऑफिस से यूज टू जस्ट प्ले सॉन्ग्स एट होम मम को भी पसंद रहते थे तो मम अपने प्लेलिस्ट सब लोग अपने अपने टाइम पे चलाया करते थे So that's how I was so much into music as a part of time. And my sister was learning music. मुझे पहले से सीख रही थी वो म्यूजिक. मैं तो स्कूल क्वायर के बाद में मुझे इंटरेस्ट आया म्यूजिक के अंदर. तो मैंने यूजली घर में बहुत अच्छा माहौल, म्यूजिकल माहौल देखा और म्यूजिक लवर्स हैं घर में सबके सब लोग. और दैट्स हाउ आई गॉट इनटू म्यूजिक. जब मेरे टीचर्स ने मुझे स्कूल क्वायर के लिए सिलेक्ट किया था एंड आई गेस दैट वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड. एंड उसके बाद धीरे धीरे जर्नी गई, बढ़ती गई और अभी भी अच्छा
लग रहा है. लखनऊ राइट अमित?
दैट वाज इन लखनऊ. यस जी.
क्या बात है. और ये बताएं कि यू नो लखनऊ में रहते हुए और यू नो वहां का जो पूरा माहौल है संगीत का, आर्ट का, तो उसका प्रभाव कैसा रहा आपके ऊपर? फोक म्यूजिक या फिर यू नो शास्त्रीय संगीत, किस तरह से उसका यू नो प्रभाव और कंट्रीब्यूशन रहा आपकी लाइफ में?
जी शास्त्रीय संगीत से मैं सच बोलू तो मैं जब भातखंडे यूनिवर्सिटी में आया तब मेरा शास्त्रीय संगीत में मेरी रुचि और ज्यादा हुई बिकॉज मुझे उसकी डेप्थ समझने को मिली. उसके पहले मैं ज्यादातर अगर मैं बोलूँ तो मैं लाइट म्यूजिक में ज्यादा था. सुगम संगीत में मैं ज्यादा इंटरेक्टिव महसूस करता था और उसमें मुझे मजा भी आती थी बिकॉज जब हमें मैं बात करूँ अगर गजलों की और ठुमरियों की तो मैं अपने सीनियर्स को बहुत सुनता था उस समय. ऑफ कोर्स स्कूल में हमारे टीचर्स सिखाया करते थे हमें यूजुअली भजन के, उसमें ज्यादा सिखाया जाता था स्कूल के एक्स्ट्रा जो हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में म्यूजिक आता था. इट वाज माय मेन सब्जेक्ट एट पार्ट टाइम. फिर मुझे धीरे धीरे सुगम संगीत से मेरे बचपन में बॉलीवुड हर जगह चाहे वो यू नो भजन हो या फिर पार्टी सॉन्ग्स हो या फिर यू नो अगर हम क्लासिकल भी बोले या फिर हम लोग लाइट म्यूजिक भी बोले तो बहुत ज्यादा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड था माहौल हमारे इर्द गिर्द. क्योंकि मुझे अभी भी याद है पहली ठुमरी जो मैंने बहुत ही ज्यादा सुनी थी जी अजय चक्रवर्ती साहब की वो कॉम्पोजिशन थी, गाना था आन मिलो सजना जो कि गदर में आई थी और उससे मेरा ठुमरी की तरफ बहुत ज्यादा यू नो आकर्षक मुझे लगा था वो और मैं ठुमरी को और सुनना शुरू किया. फिर मेरे जितने गुरु भी रहे हैं उन सबको मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे और थोड़ा डीपली और ब्रीफली उसे समझाना शुरू किया कि यू नो इनके नुएंसेस क्या होते हैं ठुमरी के या फिर दादरा के और अदर फोक म्यूजिक एज वेल. पर लखनऊ में रहते हुए मेरा सर्कल अच्छा म्यूजिशियन से अच्छे म्यूजिशियंस के साथ बीतता था इसलिए शायद से मैं और भी रीजनल फोक की तरफ अट्रैक्टेड था, जैसे राजस्थानी फोक हो गया, पंजाबी फोक हो गया, तो उन्हें भी सुनना मुझे और अच्छा लगता था. और जैसे जैसे मेरा विथ बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मेरा यू नो एक्सप्लोर करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, मुझे समझ में आता है कि जब मैं ओडिशा गया था तो मुझे ओडिशा का रीजनल म्यूजिक बड़ा अच्छा लगा था. फिर हम इस तरीके से यू नो इट्स एंडलेस समहाउ. और मैं बैंड फ्रेटर्निटी में बहुत ज्यादा इंटरेक्टेड रहा तो फिर मुझे गॉस्पेल म्यूजिक बहुत सुनने को मिला जिसको मैंने और बेहतर समझा. फिर इंग्लिश म्यूजिक की तरफ भी रुझान रहता था तो यू कैन से इट्स मतलब मैं सारी किस्म के म्यूजिक को सुनना पसंद करता था. वैसे एक टाइम होता था जब मुझे मेटल म्यूजिक बड़ा अच्छा लगने लगा था, रॉक म्यूजिक को सुनते हुए मेरे घर वाले कहते थे इसको क्या हो गया, ये हर दिन एक अलग जोन में रहता है. आई फील या म्यूजिक एंडलेस है यार, वो लिमिटलेस.
बिल्कुल 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 सही कहा आपने. तो अमित आई थिंक दिस इज द राइट टाइम दैट आई कैन रिक्वेस्ट यू टू यू नो सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ एनी ऑफ योर फेवरेट फोक सॉन्ग. इट कुड बी यू नो ऑफ एनी लैंग्वेज बट एक फोक गाने से शुरुआत हो जाए.
ओके ओके तो फोक म्यूजिक में ठीक है तो हम फोक की तरफ जाते हैं थोड़ा सा लाइट म्यूजिक से अलग हटके. ओके एक बहुत ही अच्छा गाना था जो कि कैलाश खेर साहब मुझे बड़े पसंद है फोक म्यूजिक के मामले में, मुझे बड़ा मजा आता था उनको सुन के. सो वंस द फर्स्ट सॉन्ग वाज लाइक ओ आरा मारे ऐसे जोर मुक्की खावे साधु चोर बिजली सी कड़ गए घनघोर भितर भितर बड़े बोर कैसे चलू मैं तो तिगड़ तिगड़ के ओ जो मण झल के जो मण झल के ओ जो मण झल के जो मण झल के हो मंडन वाला किए करे तेरी जोड़ी में ओ
वाह लवली लवली क्या बात है क्या बात है.
सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फोक सॉन्ग्स आई वुड से.
और ये सब गाने सुन के और ये सब गानों को गा के जिस तरह का आपका एक तरह का ऑटोमेटिक रियाज जो हो गया वो आपको बॉलीवुड में बहुत काम आया, इज व्हाट आई कैन जस्ट फील. बिकॉज जब हम आपके गाने सुनते हैं बॉलीवुड के, तो द रेंज दैट प्रीतम्स कॉम्पोजिशंस हैव यूजुअली वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होते हैं. यहाँ से वहां कहीं भी सिंगर को जाना पड़ता है.
True.
विथ योर वर्सिटिलिटी एंड विथ योर सच ए रिच लिसनिंग जो आपका रहा है, वो सब आपको बहुत ही ज्यादा काम आया है आई एम श्योर. बिकॉज आई कैन फील दैट जो फोक की जो जो गजल गायकी या सुगम संगीत की वो जो पूरे वो खास स्टाइल है, वो सब आपको बॉलीवुड सिंगिंग में, कमर्शियल सिनेमा की सिंगिंग में बहुत काम आया.
जी उसमें मुझे आई गेस मैं इस फोक से अगर हम सुगम संगीत के बाद जो बॉलीवुड में जाते हैं कुछ लिमिटेशंस आते हैं जो सही होते हैं, जो हमारे रिकॉर्डिस्ट हमें समझाते थे। मैं बिगनिंग में मैं पूरे हवाले कर देता अपने आपको कि ब्रो आई एम नाउ यू आर कमांडर इन चीफ, जो हमारे रिकॉर्डिस्ट होते थे और कंपोजर होते थे, और क्योंकि उन्हें पता है व्हाट एग्जैक्टली पिक्चर दे आर लुकिंग फॉर, बिकॉज उस समय गाने की बात नहीं हो रही, इस समय प्रोजेक्ट की बात हो रही है। बिकॉज इट हैज टू बी इन द वीडियो, इट हैज टू कम अप एज इन अ वीडियो, इट हैज टू कम अप एज इन अ प्रोडक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी गाइडेंस मुझे देते थे हमारे टेक्नीशियंस और हमारे कंपोजर्स, आई एम ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज वो हमें अपने एक नेक्स्ट लेवल पे लेवल अप करने में बहुत काम आता है। सो यस यू आर राइट कि हमारे बेसिक्स में हमारे टीचर्स ने हमें इतना तैयार करवाया है एंड अभी भी होती है मेहनत। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रीतम दा इज कि वो हमें मेहनत करवाते हैं, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट टेक अस टू द यू कैन से लेवल अप करता है हमारा सिंगिंग में।
बिल्कुल
सो या थैंक्स टू हिम आल्सो। जी
बिल्कुल. और अब हम जानना चाहेंगे कि लखनऊ से मुंबई कैसे आना हुआ, और वो डिसीशन आपने जब लिया तब घर वालों का रिएक्शन कैसा था, एंड हाउ डिड यू प्लंज योरसेल्फ इन दिस डीप सी विच इज फुल ऑफ टैलेंट्स, एंड एवरी डे सो मेनी पीपल कम हियर टू ट्राई देयर लक, एंड इतने सारे सिंगर्स आर्टिस्ट ऑलरेडी हैं इंडस्ट्री में, इतनी कॉम्पिटिशन है. तो क्या क्या ख्याल आए आपके दिमाग में? आई वुड लाइक टू नो वेन यू वर न्यू इन दिस सिटी एंड वेन यू डिसाइडेड यू वॉन्ट टू ट्राई अ करियर इन म्यूजिक.
जी जी इवा मेरा पहला मैं एक बैंड कंपटीशन के लिए आया था बॉम्बे, और आई रिमेम्बर आइडिया रॉक्स इंडिया था, और हम लोगों ने उसमें रैंक फोर्थ, हमको रैंक मिला था हमारी टीम को, एंड द बैंड्स नेम वाज तृष्णा, एंड आई रियली हैड वंडरफुल टाइम टू वर्क अलोंग विद देम एज वेल। उसके बाद सब लोग वर्कआउट करके एकदम से कि यू वुडंट बी एबल टू शिफ्ट टू बॉम्बे, मेरे अंदर शायद से वो एक एक किड़ो फाई अमित छोटा सा था कि नहीं मुझे जाना ही जाना है एंड आई हैव टू वर्क फॉर इट। एंड I remember I spoke to my father about this and he was pretty supportive. He was very confident. And बोला ठीक है आप जा रहे हैं, but focus on only one thing. Just be 100% musician there. वो आगे से ना musician, just don't think so many things कि आपको पढ़ाई का ये भी पूरा करना है, आप graduate हैं, आप MBA कर रहे हैं, आप drop out कर रहे हैं, आप जाइए और अपने आप जो भी music यहाँ पे सीख रहे हैं उसमें अपने टीचर से कनेक्टेड रहेगा, वो आपको
wow.
sessions देते रहेंगे, वो भी सीखते रहेगा, बट जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग। और जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो द फर्स्ट थिंग आई वॉज एक साल तक मुझे आई गेस ये समझने में लग गया कि कौन से स्टूडियोज का एरिया कहाँ पे है। तो उन स्टूडियोज में जाना मुझे आई गेस मैंने सबसे ज्यादा अगर बॉम्बे में कोई चीज ढूंढी है तो वो स्टूडियोज ढूंढे। और मैं अभी भी मुझे अच्छा लगता है नए म्यूजिशियन से मिलना और डब करना, दो आई माय ओन सेटअप एंड आई रिकॉर्डेड ओवर देयर समटाइम्स, बट आई रियली लाइक टू गो टू स्टूडियोज एंड रिकॉर्ड इन बॉम्बे। फिर बॉम्बे का जर्नी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, बट मैंने आई गेस अपने फर्स्ट ईयर में बॉम्बे में जब मैं आया था तो आई गेस 2011 में ही मुझे पहले ईयर में ही स्टूडियो का काफी एक्सपीरियंस मिलने लगा था। आई लाइक टू थैंक प्रशांत सिंह जी फॉर दिस, बिकॉज उन्होंने बिगनिंग में आई गेस, फिर राशिद खान साहब भी हो गए, उन्होंने भी मुझे स्टूडियो से काफी हद तक मुखातिब कराया, उन्होंने काफी हद तक मुझे मौके दिए स्टूडियो में। फिर इंजीनियर्स के साथ एंडलेस एक नेम्स का लिस्ट आ जाएगा इफ आई वुड से कि मुझे सबके साथ काम करने को मिलता रहा। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक मेरे पास दे वर लाइक 4-5 सॉन्ग्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन स्टूडियोज। बट या वो जर्नी पैशन की वजह से शायद से मुझे स्ट्रगल नहीं लगता था। जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है, नाउ आई फील लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई वर्ड्स एंड माई सिंगिंग एंड माई कमिटमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट वो पैशन इतना ज्यादा था कि मुझे लगता ही नहीं था यार कि मैं मैं कुछ स्ट्रगल करने आया हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता था मेरे को कुछ अच्छा गाने को मिलना चाहिए, मुझे गाने की इतनी भूख होने लगी थी मुझे अच्छा कुछ गाने को मिले और मैं अच्छा डिलीवर भी करूं उसे. तो मेरा बहुत, मेरे गुरुजी का बहुत अच्छा डायलॉग था, बड़ा अच्छा खाना और अच्छा गाना. अभी जो मैंने वेट पुट ऑन किया है वो मेरा 12th स्टैंडर्ड और बीकॉम सेकंड ईयर का है. मैं ये ऐसा ही था, मैं बिल्कुल आई गेस इतना ही हेल्दी और अच्छा हुआ करता था. उसके बाद फिर वो वर्कआउट का चस्का लग गया, वर्कआउट बहुत अच्छे से करने को मिलने लगा, ट्रैवल एंड एवरीथिंग, जंक फूड्स एंड एवरीथिंग, नो स्लीप साइकिल एंड ऑल. बट सो आप मुझे ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि व्हेन आई वाज इन माय for you know couple of years in the beginning in Bombay, I was exactly like this. और मैं ऐसे क्लीन शेव रहना पसंद करता था, ऐसे बच्चों की तरह बाल, आईटी इंजीनियर लगता था मैं. और लोगों लग रहा है गायब है ये लड़का, ये ऐसा इंजीनियरिंग स्टूडेंट लग रहा है.
Oh my God, absolutely right, Amit. वाह क्या बात है. और ये बताएं कि यू नो प्रीतम दास से मुलाकात कैसी हुई और यू नो हाउ डिड यू नो बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यू नो सिंगर्स इफ आई कैन से लाइक यू नो प्रीतम दास के कॉम्पोजिशंस और उनके साउंड ट्रैक में जब भी अमित मिश्रा का कोई सॉन्ग होता है तो वो एक खास सॉन्ग होता है एंड दैट जस्ट शोज यू नो योर बॉन्ड विद यू नो योर वन ऑफ योर मेंटर्स इफ आई कैन से.
Yeah, of course, Da is my mentor and Da has been a great mentor. और उन्होंने मुझे सारे dimensions में train करा. I would give this compliment to Da because I guess जितने भी artists उनके साथ काम करते हैं वो उन्हें बेइंतहा चाहते हैं क्योंकि वो खुद में इतने अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे mentor हैं, एक अच्छे composer हैं, you know world class composer हैं. उनके साथ पहला मुझे interaction याद है कि मेरा पहला इंटरेक्शन उनके साथ 2010 में आइडियारॉक्स में हो चुका था.
राइट,
आई वाज ऑन स्टेज और आई विल टेल यू द स्मॉल स्टोरी जो कि बैकस्टेज स्टोरी था. तो उस दिन हमें कुछ होली का गाना था, होली से रिलेटेड कुछ ऐसा बनाया था और मुझे बोला गया कि यू नो आपको जाना है सबको कलर लगा देना है ऐसे ऐसे करके, यू नो क्रिएटिवली ऐसा कलर सबको लगाना है. मैंने प्रीतम दा को देखा और मैंने बोला ब्रो मैं नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऐसे कलर लगा ही नहीं सकता उनको जाके. मेरा मेरे वो आइडल है इतने बड़े और मैं ऐसे यू नो इट वुड बी डिसरिस्पेक्ट इफ इफ आई वुड जस्ट टच हिज फीट एंड मैं ऐसे कलर लगा लूं. तो टीम ने बहुत कुछ बोला उस दिन, हमें टीका भी नहीं लगाया गया उस शो में. और पर हम लोग क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड के लिए और दा ने हमें मतलब अच्छे मार्क्स दिए. वो मेरा पहला इंटरेक्शन था दा के साथ और मुझे याद है मैं उनके पैर छूने के लिए आफ्टर परफॉर्मेंस गया और उन्होंने मुझे गले लगाना बोला, रॉकस्टार्स गले मिलते हैं ब्रो. एंड That was my first interaction with Dada, and after 6 years, I got the chance to record first track in his studio.
Oh my God! और
उस गाने को गाते time and 6 साल बाद मैं फिर दास से जब मैं studio में मिला तो उनको फिर से सामने ऐसे देखा और मैंने उस दिन बहुत कोशिश की कि मैं उस पिच पे अच्छा गा पाऊँ, but I wasn't up to the mark. I still remember, but Dada was like, "Yeah, he's sounding good, very good." ओके ठीक है, पूरा ट्रैक अमित ऐसा है, अंतरा थोड़ा और ऐसा है. एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड इनके गाने में यू नेवर नो कि कब क्या चेंजेस रहे, बट दे एक्चुअली समटाइम्स दे एक्चुअली एवरी टाइम दे मीन. तो वो गाना मैंने गाने के बाद में इसलिए खुश था कि मैं पहली बार प्रीतम दा के स्टूडियो में डब करके आया हूँ कुछ. एंड बहुत फेलियर्स देखे उसके बाद में, बहुत गाने ऐसे थे जो मैं नहीं निभा पा रहा था. देन सडनली एक दिन आता है जब मैं पूरी रात डबिंग करता रहा और दादा मॉर्निंग में 8 or 9 o'clock मुझे सुनने आए. एंड वो मुझे देख करके मुझे उनके एक्सप्रेशन ऐसे लगे, दादा सिंह तू 8 घंटा डब किया फिर भी अच्छा डब नहीं किया. I felt like that. और फाइनली जब वो गाना मिक्स होके गया एंड दैट सॉन्ग इज इटसेल्फ वन माय इमोशन एंड दे फाउंड इट रियली नाइस बिकॉज मुझे, मैं शायद दादा को समझ नहीं पाया उस समय, बट दैट वाज लाइक हाँ आई गेस इट्स साउंडिंग गुड, बट मुझे लग रहा था दादा इज नॉट दैट हैप्पी. बट आई स्टिल रिमेम्बर मैंने रात में 12 बजे सेशन रिकॉर्ड करना शुरू किया था, कौशिक दा थे हमारे साथ और मैं मॉर्निंग 8 o'clock तक गाता रहा था. मैं अपने आप से सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रहा था.
Fantastic. What a story.
And दा को, I guess, कौशिक दा भी उतना पेशेंस रख के आए थे क्योंकि रात में दा आए थे, उन्होंने बोला ठीक है आप लोग रिकॉर्ड करके रख दो मैं बाद में आके सुन लूंगा. अमित ब्रीफ ऐसा है, यू हैव टू सिंग इट दैट वे, यू हैव टू बी इनटू दैट डांस मोड एंड एवरीथिंग. और मॉर्निंग में और उसके बाद आई गेस 20-25 days के बाद जब वो गाना रिलीज हुआ है एंड आई फेल्ट दादा का जो सिलेक्शन था एक्चुअली करेक्ट था, मैं समझ नहीं पा रहा था. और कौशिक दा को थैंक्स बोलूंगा, उन्होंने बहुत पेशेंस रखा था क्योंकि मैंने उस दिन 8 से 10-12 cups कॉफी पी ली थी एंड दे वर लाइक यार ये तो गाया जा रहा है इसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है. सो या दिस वुड बी लाइक कपल ऑफ द स्टोरीज लाइक आई वुड रियली वांट टू शेयर share it with you, Eva.
Lovely. Thank you so much. Because, you know, to talk about, you know, your failures in such a manner, it takes, you know, courage, and it takes a big heart. Because these sub stories or yehi sub, you know, zarur kaam aayega, you know, listeners ko, khas karke jo, you know, musicians banna chahte hain ya singers banna chahte hain, jo is industry mein aana chahte hain, to unke liye ye sab experiences, ye sab failures, ye sab, you know, highs and lows, unko bahut hi zyada kaam aayenge. These lessons, you know, learned from, you know, your personal experiences. So that's great. Thank you, Amit, for sharing. And chaliye baat karte hain then about Bulleya, the song that totally took you up, you know, the charts, and you know, jise keh sakte hain raat aur raat, everybody was like, who is this guy? Amit Mishra has sung Bulleya in Ae Dil Hai Mushkil, and what a song, what a composition, and you and Shilpa Rao, oh my god, that song aaj bhi goosebumps hai. I'm sure, you know, this will remain as one of the most special songs in your life.
Mujhe yaad hai, it was a very normal process us gaane ke liye. Tab tak Da ke saath mera Man My Emotion South Tara ke release ho chuke the, and I got a call from Dada's team ki ek gaane ke liye vocal test karna hai, so if you could just join in. I was like, okay. Main studio pahuncha, it was afternoon, I guess, that was there, and Da ne mujhse discuss kiya mukhde ke bare mein, and he was like, Amit, you that straight staccato singing for this, and you know, it needs to be like skill ko leke thoda sa unhone zikr kiya, aur uske baad उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रोजेक्शन के बारे में गा के बताया. उन्होंने फिर दाने बोला, ठीक है, लेट्स ट्राई हाउ इट वर्क्स. फिर मैंने मुखड़ा डब किया, एंड फिर मुखड़ा दाने सुना, एंड ही वाज लाइक, ओके, सुपर सॉरी अमित, थैंक्स. एंड फिर मुझे याद है कि कुछ एक महीने या दो महीने बाद मुझे बोला गया उस गाने के लिए कि अमित, यू हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन. एंड आई वाज लाइक, ओके. एंड फिर मैं और तैयारी से गया, क्योंकि मैं तब तक समझ चुका था दैट द सॉन्ग हैज लॉट ऑफ इमेंस, इट हैज लॉट ऑफ हाई नोट्स, intensity as well, और थोड़ा projection को लेके. तो मुझे याद है, इस गाने को गाने के पहले मैंने बहुत सारे समोसे और चाय खाया था. समोसे और because मैं nervous हो गया था, और studio जाने से पहले I remember मैं ऐसे समोसे, और if I'm not wrong, शायद से समोसा पाव होता था वो लाल चटनी के साथ, मैंने ऐसे order किया घर पे, मैंने खाया 3-4 समोसे खाए, चाय पी, और फिर मैं स्टूडियो गया. मैंने कहा, देखते आज क्या करना है इस गाने के साथ. okay, let's see that. और मैं स्टूडियो पहुंचा हूं, और उसके बाद फिर मैंने मुखड़ा डब किया. फिर उस दिन भी मुखड़ा डब हुआ. उस दिन भी अंतरा डब नहीं हुआ. फिर उसके बाद तीसरे सेशन के टाइम में समझ गया था कि ब्रो, मैं मतलब इट विल टेक लॉट ऑफ इंटेंसिटी अगेन. तो मैंने, मुझे याद है कि उसके एक दिन पहले मैं बहुत सोया, जब मुझे पता चला कि कल डबिंग है. आई वॉज लेजी मैम दैट ऑन दैट डे. मैं कुछ वर्कआउट, कुछ जिम विम नहीं जाना है. मुझे कल सोना था, सो के उठा, ब्रेकफास्ट किया, जो कि लंच के टाइम पे किया था मैंने शायद से, और फिर मैं सीधे स्टूडियो पहुंचा, एंड आई ट्राइड टू गिव इट माय 1000% ओवर देयर. एंड फिर मैंने उस गाने को उस दिन अंतरा डब किया. तो तीसरे सेशन में हम मुखड़े और अंतरे दोनों पे आए, और उसको डब करने के बाद फिर उसका एक फोर्थ सेशन हुआ, फिर एक फिफ्थ सेशन हुआ. तो मुझे प्रॉपरली आई स्टिल रिमेम्बर अश्विन कुलकर्णी सब वॉज डबिंग मी, एंड आउटरो डब कर रहे थे हम लोग गाने का, एंड जहाँ पे वो मुर्शिद मेरा का जो आलाप आता है दैट आई सी एंड अश्विन कुलकर्णी हिमसेल्फ ही इज अ ब्रिलियंट 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 आर्टिस्ट. तो जब मैं वो डब भी कर रहा था, तो जब वो मुझे बता रहे थे, तो उनके जो डायनेमिक्स के बारे में उन्होंने मुझे बताया था, डामेट यू जस्ट नीड टू टेक इट लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, गाओ ऐसा, डायरेक्ट होड निट करो, बेंड मत करो, बाबा लेगाटो उसमें मत जाओ. मैं उस समय नहीं समझ पाया वो एग्जैक्टली कह क्या रहे, बट जब वो रिजल्ट बाहर आया बाद में, आई फाउंड इट रियली रियली इंटरेस्टिंग. एंड मुझे याद है कि कौशिक दास साहब और अश्विन कुलकर्णी साहब दोनों ने डब किया था, और दादा मुझे अंतरा समझाने आए थे, बिकॉज आई हैड टू मेंटेन दैट एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग इन द सॉन्ग. सो इट वाज सुपर फन. इट वाज आल्सो अ स्टोरी. एवरी सॉन्ग हैज इट्स ओन स्टोरी. एंड फिर आई गेस पांचवे सेशन में जाके फाइनली ये गाना पूरा डब करवाया था, एंड आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज आई लर्नड सच अ वंडरफुल सॉन्ग. सो आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट.
Lovely and rightly said, Amit. मतलब खास करके प्रीतम दा के हर एक गाने के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है. लाइक यू नो, जब बहुत यू नो वक्त पहले जब वी हैड जावेद अली ऑन दिस पॉडकास्ट, या एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट, ही इज सच अ
आर्टिस्ट, तो मैंने उनसे जब भी मेट के वो नगाड़ा नगाड़ा सॉन्ग की स्टोरी के बारे में पूछा कि वो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि वो गाना यू नो कितना डिफिकल्ट है यू नो फॉर अ सिंगर टू सिंग इन दैट पिच. और तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रीतम दा को पहले ही बोल दिया कि ये पिच बहुत हाई है मेरे लिए, बट प्रीतम दा तो माने ही नहीं. ही सेड दैट यू विल हैव टू डू इट एंड ही मेड जावेद अली वॉज टेलिंग मी दैट यू नो ही वॉज जस्ट प्रेइंग कि एक बार सही नोट लग जाए, एक डबिंग में पूरा हो जाए. लेकिन प्रीतम दा ने भी करवाया और यू नो कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से यू नो स्टूडियो में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया या स्टूडियो नहीं मिल पाया, समथिंग लाइक दैट. उसकी वजह से तीन बार उनको वो उस हाई पिच में गाना पड़ा वो सॉन्ग. एंड यू नो दैट्स व्हाट लाइक प्रीतम दा के हर एक सॉन्ग के पीछे कोई ना कोई यू नो मजेदार स्टोरी रहती है.
आज भी मतलब जावेद भाई बुरा ना माने इस बात का, मेरे सीनियर है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ. तो जावेद भाई को मैं एक बार रिहर्सल्स में मिला और जावेद भाई ये गाना रिहर्स करने वाले थे, हम प्रीतम दा के कॉन्सर्ट में जा रहे थे. तो बिफोर सिंगिंग दिस सॉन्ग जावेद भाई वाज लाइक सो आई वाज लाइक ब्रो इट्स लाइक अ वर्कआउट और समथिंग और मींस ही वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ लाइक बट व्हेन ही डन लाइक जब उन्होंने पहला लाइन गाया वाज लाइक
धमाका क्या बात है.
बट वो जो उसके पहले वो सब ऐसे यू नो श्रग्स में और ये सब मारने उन्होंने शुरू किया लाइक ब्रो मतलब ऐसा पूरा लग रहा है आज यहाँ पे एमएमए फाइट होने वाला है ऐसा कुछ है.
बट सीरियसली
ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट गाय एज वेल. जब उन्होंने गाया है रिहर्सल में गाया है तो अभी हम लोगों का मतलब फक्ते उड़ जाना कि आपके हमने बोला ब्रो व्हाट अ रेंज इज दैट गाय हैज इन हिमसेल्फ एंड ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट गाय. मींस आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट.
क्या बात है. एंड मूविंग ऑन जग्गा जासूस वॉज अनदर यू नो स्पेशल प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट यू नो साउंड ट्रैक्स ऑफ प्रीतम दा.
जी जी जग्गा आई गेस मुझे वो पूरा एल्बम बहुत अच्छा लगा था
मुझे भी.
और मुझे गलती से मिस्टेक गाना इसलिए भी पसंद था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो फन लविंग सॉन्ग्स और वो डांस एलिमेंट वाले जितने भी गाने मुझे बड़े मजे आते हैं, मैं बड़े मजे से गाता हूँ उन्हें और मुझे फील भी आता है उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का. तो आई रिमेम्बर कि उसमें भी आई गेस मैंने दो तीन सेशंस लिए था और इसीलिए मैं हर बारी जितने हमारे टेक्नीशियंस हैं उनको धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए इतना पेशेंस रखते हैं.
क्या बात है. वेरी गुड.
मैं स्टूडियो जाता हूँ और मेरे अंदर शायद से मेरा मे बी इन फ्यूचर इफ आई मेरा ग्रास्प ऑफ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मैं गाना सुनूं और जैसी स्टोरीज हम सुनते आए हैं हमारे लिविंग लेजेंड्स के बारे में, सोनू जी हो गए, शान दादा हो गए, सुरेश जी हो गए, सुरेश भाटिया जी हो गए, तो सब लोगों के बारे में कि वो लोगों को गाना तुरंत समझ में आ जाता था. मैं थोड़ा सा ट्यूबलाइट हूँ इसलिए मुझे ट्यूबलाइट में गाना भी मिला था शायद गाने के लिए. तो मुझे थोड़ी देर में समझ में आता है
गाना. सीरियसली
और मैंने जब वो गाया तो मुझे उसमें हमारे आकाश सेन गुप्ता जी भी थे, दादा भी थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में. तो मुझे याद है कि जब गलती से मिस्टेक वाले गाने में आई गेस हम लोग बिहू ही करते रहते थे, टेक्स तो कम होते थे. वी यूज्ड टू गेट इनटू दैट स्विंग क्योंकि मुझे उस दिन स्विंग को लेकर के थोड़ा सा पॉइंट आ रहा था बार बार. तो आकाश यूज्ड टू से दादा यूज्ड टू मेक स्विंग है मैं डन डन डम सो दैट हैज अ रीजनल स्विंग ऑफ यू नो बिहू. तो
राइट
हम लोग मोस्ट एक लाइन टप होता था फिर हम लोग बिहू करने लगे ब्रो ये फील आ रहा है ब्रो आ रहा है ब्रो आएगा अभी और गाने में आएगा फील. सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट. बट आई गेस वो गाना हम लोगों ने काफी जल्दी टप किया था बट फिर भी मुझे दो से तीन सेशन लग गए थे उस गाने को टप करने में. बट वो सुपर फन है, वो सुपर फन टू वर्क विद द टीम. और मुझे याद है कि मैं खुद से खुश नहीं था तो फिर मैंने रात में फिर फोन किया और फिर फोन करने के बाद आकाश ब्रो ने बोला कि ब्रो तू आ जा एक बार फिर से ट्राई कर दे. और मैं लिफ्ट से आया देखा सामने दादा खड़े, दादा कहते अरे अमित कैसा है. मैंने बोला ठीक हो दादा. अरे क्या करना है. बोला दादा गलती से मिस्टेक डब कर रहे हैं. अरे अच्छा तो लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, वेरी साउंडिंग गुड, इट्स साउंडिंग गुड, व्हाई टू वेस्ट टाइम. अरे हाँ बैठते हो, चिल करते हो, कॉफी पीते हो. ओके.
तो oh my God.
मेरे अंदर कभी भी पूरा नहीं होता था कि मुझे ये गाना मैंने अच्छा गा लिया. और आई गेस और टीम भी उतनी सपोर्टिव होती है. तो टीम प्रीतम के लिए सबसे पहले प्रोड्यूस बिकॉज ये स्टैट से स्टोरी सब लोग बताएंगे बट दैट प्रीतम दा एंड द टीम दे बोथ वर्क फिनोमिनल टुगेदर एंड ऑल बेस्ट विशेस टू देम एंड दे आर चैंप्स एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ मी.
एब्सोल्युटली. और वो एनर्जी वो पैशन यू नो फिर नजर आता है राइट इन ऑल द सॉन्ग्स ऑफ प्रीतम दा. द एंटायर टीम इज सो रॉक सॉलिड. एंड यस यू नो लेट्स टॉक अबाउट योर लेटेस्ट यू नो सॉन्ग यू नो द एंथम सख्त जान इन 83. और जैसे ही मैंने ये गाना सुना और देखा मैंने तुरंत ही यू नो आपको मैसेज किया बिकॉज आई जस्ट कुडंट स्टॉप माय सेल्फ.
नो
एब्सोल्युटली अमित यू साउंडेड you know, perfect. Thanks to the entire team, I must say. But Amit, this song was just like for you.
That's so sweet of you saying so. And I really appreciate your concern about texting me that, Amit, it's sounding phenomenal. And thank you, Eva. And it's always an honor to hear it from you because you have immense knowledge about music. And of course, you have immense knowledge about the industry as well. How production team works, how the different departments, they, you know, execute their work. तो या ये गाना बहुत ही मजेदार था, बहुत दमदार था. और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगेन मेरी एक वाइब जो है वो मुझे इसमें फील हुई जब मुझे दाने गाने के लिए बोला ना. आई वाज रियली एक्साइटेड टू सिंग दिस सॉन्ग. और इसमें बहुत लोगों का हाथ है इस गाने के पीछे मुझे गवाने में, बिकॉज आई वॉज इन अ टफ ट्रैवल शेड्यूल एंड so I was in a very tough travel schedule at that part of time. And I remember मेरे बहुत बार टिकट चेंजेस हो रहे थे. मैं एक शो से दूसरे शो में एक दिन पहले जाना चाहता था. बट जब भी मुझे स्टूडियो का कमांड आता है तो मेरे अंदर का प्लेबैक सिंगर जाग जाता है. और फिर मैंने अपने हॉलीडेज भी, वेकेशंस भी अपने होम टाउन जाने के लिए काफी बार चेंज किए इस गाने के लिए. बट एवरी मोमेंट वर्थ इट बिकॉज मैंने हर सेशन में 140% कोशिश की सो दैट आई कुड यू नो कॉन्कर दिस सॉन्ग. ये गाना कॉन्कर करने वाला था बिकॉज जो दादा के ब्रीफ थे, प्रीतम दा के जो ब्रीफ थे और मुझे रिकॉर्ड किया था, अनिरुद्ध साहब रिकॉर्ड कर रहे थे एंड अश्विन भाई वाज आल्सो देयर एंड आई गॉट अ चांस टू मीट अंतरा आल्सो द स्टूडेंट. शी वाज लाइक ओके यू आर रॉकिंग ब्रो, साउंड अच्छा कर रहा है. बट मैं रिकॉर्डिंग लगा हुआ था तो आई वुड से अनिरुद्ध वन ऑफ द टीममेट्स फ्रॉम दादा, ही इज ब्रिलियंट ब्रो. मींस वो खुद में इतना अच्छा गाते थे, मुझे वो बहुत दिन बाद पता चला था जब उन्होंने मुझे एक तान सिखाई थी. मैं आज भी वो तान नहीं गा पाता तो मुझे समझ में मुझे कौन रिकॉर्ड कर रहा है. अनिरुद्ध वाज ब्रिलियंट इन दैट वे एंड जब उन्होंने सेशंस भी लिए तो उन्होंने भी मुझे नुएंसेस को लेके काफी ध्यान दिया इसमें, बिकॉज देयर इज अंतरे में कुछ सेक्शंस है जो दे वर एक्चुअली उनके प्रोजेक्शन में, बिकॉज इट वाज सॉर्ट ऑफ एन एंथम सॉन्ग. तो आई गेस मुझे जो कोई ब्रीफ करता है गाने में और वो बहुत पर्टिकुलर है और दादा भी बहुत पर्टिकुलर है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग वाज लाइक सानी साहब जिन्होंने लिरिक्स लिखी हैं इस गाने की, उन्होंने आई गेस ग्रामेटिकली सानी साहब ने बहुत ही ग्रामेटिकली इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स थे जहाँ पे अंतरे में उन्होंने उसे रिक्रिएट करा, उन्होंने बाद में उसे फिर करेक्ट करवाया गया. और मैंने समझा तब जाकर के कि यार मतलब पूरी टीम कितना ज्यादा इन्वॉल्व होकर इस गाने को कर रही है. बट आई हैड वंडरफुल वंडरफुल टाइम टू रिकॉर्ड दैट सॉन्ग.
Lovely, lovely, amazing. Talking about you know your independent music, Amit. You know, khas karke lockdown mein, you know, we got to see the you know the other side, the independent side of you as an artist. So, Amit, you know, how was that experience? And you know, if we can talk, you know, about a couple of songs that you released.
Okay. So the part of time, actually, I was I really enjoyed working on devotional tracks. And there were a couple of independent tracks where I would say Fakira was really close to my heart because I loved singing the song. And it was, again, Beeprax's brilliant composition in that case. Love. And there was one project called Saraswati Vandana, which was a devotional track. There was one project was Rudrashtakam, which was, again, one of my favorite tracks. For Anand Ajpaisa, I sang two songs, one song called Tera Diwana. And it was super fun to jam over that song along with Anandji. And later I got the chance to sing Oma, and later I got the chance to sing Adai Reh Jaunga. There was song, there's so many songs, I guess, and I don't even remember the name right now. But yeah, I was so much into, aap keh sakte hain, maine devotional gaane bahut saare gaaye the is beech mein. And I was really enjoying that time because I got the chance to relive the Sanskrit language. और जो मुझे रुद्राष्टकम में सीखने को मिली वापस से एंड इट वॉज सुपर फन. सो या उनमें और हाँ कमर्शियल उसमें जो हिट हुए गाने उनमें से फकीरा ने बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट किया एंड पीपल लव्ड इट एंड दे अप्रिशिएटेड दैट सॉन्ग एज वेल. सो या जी
लवली अमित, यू नो आपने इतनी सारी बातें की हमारे साथ, क्या क्या यू नो एक्सपीरियंसेस शेयर किए. बट आई वुड स्पेसिफिकली लाइक टू नो दैट यू नो व्हाट आर द टिप्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर. कौन से ऐसे यू नो खास बातें टिप्स यू नो जो यू नो ध्यान में रख सकते हैं एस्पायरिंग सिंगर्स You know, out of your experiences, if you can share.
मैं टिप्स उन्हें कैसे दूं, मैं खुद सीख रहा हूँ अभी तो. पर I would say थोड़ा डिटेलिंग में म्यूजिक करना अच्छी बात है, बट अपना सोल को थोड़ा यू नो ओरिजिनल रखना बहुत जरूरी होता है. समटाइम्स वी फॉरगेट आवर सेल्फ, हम किसी और की तरह गाने लग जाते हैं. ये सब चीजें मैंने भी फेस की है और मैं तो मानता भी हूँ कि ये सब चीजें अच्छी क्योंकि हमें सीखने को मिलती है. बट द बेस्ट पार्ट इज लाइक कि नेवर गिव अप वाला एक मोड होता है जो हमेशा अपने अंदर कर लेना चाहिए. वेदर दिस सॉन्ग इज गोना बी योर्स और नॉट दैट शुडंट मैटर, क्योंकि इतने सारे गाने रिजेक्ट होने के बाद ही एक सिंगर को उसके मतलब का गाना मिलता है जो उसकी सोल का होता है और जिसको वो बहुत अच्छा निभाता है. और हर गाने को अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए. जैसा मैं अपने आप को हर दिन बोलता हूँ कि मैं अगर किसी गाने को गा रहा हूँ तो मैं उसे कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरीके से गाऊँ. और प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो करनी चाहिए. गुरुज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. और जिन लोगों मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, सर प्लीज हेल्प मी आउट, माई पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग मी इन दैट वे फॉर म्यूजिक और बेबी दैट वे, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर प्लीज बच्चों को मौका दो. उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उन्हें, बिकॉज जिस चीज में पैशन ज्यादा होता है उसमें सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. आई बीन वेरी लकी दैट आई गॉट मेंटर्स एंड पीपल अराउंड मी हु वाज डैम सपोर्टिव. एंड भले हम उसे कमर्शियल एंगल से ले बट फिर भी उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. तो ऐसे लोगों के सानिध्य और गुरुओं से सीखते रहे, अपने माँ बाप का कहना माने जिस हद तक आप मान सकते हैं. शैतान तो हम भी हैं बट वो सुधारने में लगे रहते, उनका काम है. तो मम्मी पापा की बात माने, अपने गुरुओं के कहा माने और काम करते रहे, मेहनत करते रहे. और कोई भी लिमिट नहीं है म्यूजिक को सीखने की, तो उसे सीखते रहे और डिलीवर करते रहे.
क्या बात है, क्या बात है. और जाने से पहले यू नो वो भी शेयर करें कि यू नो प्रीतम दा के साथ काम करते करते यू नो क्या क्या ऐसी खास बातें हैं जो यू नो आपने यू नो ग्रैस्प की हैं, और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सीख जो उन्होंने आपको दी है यू नो म्यूजिक के चलते, या यू नो जस्ट लाइक दैट इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू नो ही हैज शेयर्ड एंड देन दैट वुड बी अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस टू यू नो.
एक्चुअली दा के सजेशंस उनके एक्शंस में होते हैं मोस्टली. तो उनके गानों को सुन के जो महसूस होता है, जो भी उनका गाना आपका फेवरेट हो आप समझ जाएंगे उसके पीछे मेहनत कितनी हुई है. सो दादा, तो पहला तो नेवर गिव अप उनका पॉइंट रहता है. दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ओवर देयर प्रोडक्शन वर्क. दे ही नेवर कॉम्प्रोमाइज अबाउट हिज वर्क, हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग. एंड ही इज उन्होंने मुझे एक सीख दी कि हम जितने हम्बल रहेंगे हम उतने बड़े स्टार बनेंगे, हम उतने अच्छे म्यूजिशियन बनते चले जाएंगे. और बिकॉज ही इज वेरी हम्बल एंड ही इज वेरी रिसेप्टिव अबाउट एवरीथिंग. आई वुड से दादा ने मुझे, उनकी तरफ से मुझे ये सीखने को मिलता है जब भी मैं कोई गाना गाता हूँ कि अपने 150% के साथ वो गाना डब करने वाले, नॉट इवन विद योर 100%. और जो भी रिजल्ट आता है इट डिपेंड्स अप टू द लॉर्ड एंड आई गेस मदरानी जो भी हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं. बट दा के साथ मुझे नेवर गिव अप का एक आई वुड से बहुत अच्छा चीज सीखने को मिली, और सख्त जान सीखने को मिला कि हाउ टू बी अ सख्त जान, बिकॉज दैट एक्चुअली मीन अगर हम इसका अंतरा सुनेंगे तो उसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, जो मैं लेस्टर साहब ने, उन्होंने सानी साहब ने भी बहुत अच्छी बातें उसमें लिखी हैं. तो हाउ टू बी अ सख्त जान इफ यू रियली वांट टू लर्न इट, जस्ट मीट प्रीतम दा इन दैट केस.
Absolutely, rightly said, beautifully said, Amit. Like always, it was a really special, fun conversation with you. And you are such a you know rock star, and you are such a an amazing person to you know talk to. So thank you for sharing you know your life with us and you know your you know valuable time with us for this podcast. Thank you so much, Amit.
Thank you for your valuable time, Eva. It was pleasure again to talk to you again. Yes. Have a wonderful time and stay safe and be healthy. Cheers. Hi, मैं हूं अमित मिश्रा और अभी आपने मुझे सुना on the podcast 9XM Soundcast. So listeners, do subscribe and follow this podcast.
Keep practicing. Listen a lot. Be open to learning. Don't be afraid of rejections and failures. These are a few golden tips shared by Amit Mishra today. He was kind enough to share with us what he has learned from his mentor Preetam till date. The mantra to never give up, never compromise with the quality. Stay humble always, and lastly, as he said, be a sakht jaan. Amit Mishra also appealed to all those parents and guardians to help and support their child's dreams as much as possible, which was really sweet. Do share with me, listener, how you enjoyed this episode. DM me on Instagram @EvaBhattPodcast or @9XM India. We post some really cool videos of this podcast on our social media handles, so do check them out. And for all the full videos, head over to the official YouTube channel of 9XM. Search for 9XM Soundcast. Goodbye and stay safe.